देश में त्योहारों का मौसम चल रहा है। देश के कई जगहों पर मंगलवार को दिवाली का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। वैसे दीपों के इस उत्सव को अधिकांश जगहों पर सोमवार को ही मनाया गया था। दिवाली के बाद अक्सर दिल्ली की हवा प्रदूषित हो जाती है। इस बार रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदूषण का स्तर पिछले सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा खराब रहा। ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल के बावजूद भी ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। दिवाली पर प्रदूषण को लेकर सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी आम आदमी पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व पर्यावरण मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने सरकार पर उपाय की बजाय बहानेबाजी का आरोप लगाया।
दिल्ली के अंदर प्रदूषण बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। आधे से ज्यादा क्षेत्रों में प्रदूषण का जो स्तर है वो रेड जोन में जा चुका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बहाने बना रहे हैं।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर दिवाली को बदनाम करने का आरोप लगाया है।
ये जानबूझकर दीपावली धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बीच में जानबूझकर ला रहे हैं। देखिए, सभी का धर्म उतना ही प्यारा होता है, सभी को आस्था होती है धर्म के अंदर। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले जानबूझकर दिल्ली में पटाखे बैन कराए, एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए, उनको खुश करने के लिए, और अब उनको खुश करने के लिए आज सुबह से अरविंद केजरीवाल जी की सारी टीम निरंतर दीपावली को कोस रही है। प्रभु राम जी के इस पावन पर्व को बार बार कोसा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाप कर दिया, लोगों ने दिवाली क्यों मनाई।
पर्यावरण मंत्री सिरसा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पंजाब में किसानों को पराली जलाने के लिए उकसाने का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है। हालांकि उनका कहना है कि पटाखों के बावजूद प्रदूषण का स्तर इस बार दिवाली पर ज्यादा नहीं बढ़ा है।
और मैं बताना चाहता हूं, दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद 356, आज सुबह 356 AQI था। ये CPCB के जो क्या आपका नाम है, समीर ऐप पे, जो मैं उसके समीर ऐप के आंकड़े दे रहा हूं आपको। तो बिना पटाखे चलाए तो 32 AQI बढ़ा, बिना पटाखे चलाए 83 AQI बढ़ा, दीपावली से और दीपावली के आगे दिन का अंतर बता रहा हूं। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 AQI में इजाफा आया, मात्र 11।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सलवाद अब अपने अंत की ओर है। मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर अपने संबोधन के दौरान उन्होंने अगले साल मार्च तक इस समस्या के खत्म हो जाने का दावा किया है।
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म हो जाएगी। जो क्षेत्र कभी नक्सल हब हुआ करते थे, आज वो एजुकेशनल हब बन रहे हैं। आज वहां बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, बड़े सपने देख रहे हैं। भारत के जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर के नाम से कुख्यात थे, वह अब ग्रोथ कॉरिडोर में बदल रहे हैं। सरकार जो इतने परिवर्तन कर पाई है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे पुलिस बलों का और हमारे सुरक्षा बलों का है।
नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपराध के बदलते स्वरूप को लेकर कहा,
हमारा समाज जितना मॉडर्न हो रहा है, क्राइम भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड, इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। अब अपराध केवल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या लाइफ पर अटैक नहीं करता, बल्कि वह हमारी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और ट्रस्ट पर भी हमला करता है। एक जमाने में केवल पैसा चोरी होती थी, अब डाटा की भी चोरी होती है। कभी सिर्फ घर में स्नेह लगती थी, अब सिस्टम में भी हैकिंग होती। ये सब मॉडर्न क्राइम के बदलते स्वरूप हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं बदला है। उसका मकसद आज भी वही है, समाज में अव्यवस्था पैदा करना, विश्वास को कमजोर करना और राष्ट्र की स्थिरता को चुनौती देना।
और अब चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की। राज्य में सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच इस बार कांटे की टक्कर हो रही है। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी महागठबंधन में कुछ सीटों को लेकर टकराव जारी है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होने की बात कही है। जेएमएम ने महागठबंधन में पर्याप्त सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाया है। पहले 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा करने वाली जेएमएम ने अब चुनाव से पूरी तरह हटने की बात कही है। वैसे एनडीए में भी खटपट है, लेकिन तैयारियों के मामले में वह महागठबंधन से आगे निकल चुका है। मंगलवार को जेडीयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने आरजेडी शासनकाल की याद दिलाते हुए अपने 20 साल के काम को गिनाया।
24 नवंबर वर्ष 2005 में जो हमारी सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए।
नीतीश कुमार ने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही है।
10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अब उसके अलावे जो 10 लाख रोजगार की बात थी, अब उसके लिए इतना काम किया गया है कि यहाँ तक रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है।
पहली बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही जनसुराज पार्टी ने भाजपा पर उम्मीदवारों को धमकाने का आरोप लगाया है। जनसुराज पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापिस ले लिया। इसके बाद भड़के जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी पार्टी दबाव में नहीं आने वाली।
हम लोग किसी से डरने वाले नहीं हैं, चाहे जितने उम्मीदवारों को खरीद लो, जितने उम्मीदवारों को धमकी दे लो, जितने उम्मीदवारों को उनके घरों में कैद कर लो।
और अंत में चर्चा भारत अफगानिस्तान की, जो आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इसी के तहत भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा बहाल कर दिया है। मंगलवार को विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी कर इसकी आधिकारिक घोषणा की गई। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। बाद में तकनीकी मिशन के रूप में इसकी उपस्थिति बरकरार रही। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।